मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 3 अक्टूबर 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही फ्रेंड्स मैं स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की अभी अक्टूबर नवंबर और अगले साल के मार्च की क्लासेस में अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। उनमें से जिन्होंने अक्टूबर की क्लास में दाखिला लिया है उनका नाम है संजीव नारायण भिसे, जिनका गांव है चिंचगवन जिला नांदेड़ महाराष्ट्र। तो संजीव आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ठीक एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से इसी तरह से स्वागत करता हूं नीतीश राज का जो सीतामढ़ी बिहार से हैं और जिन्होंने मार्च की क्लास के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो संजीव और नीतीश आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इससे पहले कि मैं आप लोगों से मुख्य विषय और आज के न्यूज के बारे में बातें करूं, आज बहुत सी बातें हैं बातें करने को, मैं थोड़ा सा एड्रेस करना चाहूंगा अपने उन स्टूडेंट्स को जो अभी अक्टूबर की क्लास में आने वाले हैं। मैंने उनसे वायदा किया था, मुझे उस वायदे को पूरा करना है। फ्रेंड्स मैंने कुछ बातें इससे पहले आप सबसे खुले दिमाग के बारे में की थी, ईगो को ड्रॉप करने के बारे में की थी। हो सकता है कि ईगो शब्द उतना ज्यादा लोगों की पकड़ में न आता हो क्योंकि अभी आपके दिमाग को मैच्योरिटी के उस लेवल तक पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो मैं एक दूसरा शब्द उपयोग में ला रहा हूं, वो है एडामेंट माइंड। ठस दिमाग कह लीजिए या जिद्दी दिमाग कह लीजिए या मजबूत दिमाग तो मैं नहीं कह सकता, अड़ियल दिमाग कह लीजिए, जो भी आप कहें इस तरह का नाम आप उसे हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में है एडामेंट माइंड। एडामेंट माइंड की विशेषता यह होती है या लक्षण यह होता है कि वो दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं होता, वो अपने आप को ही हमेशा सही मानता रहता है। चलिए एक बार 60-70 साल की उम्र का व्यक्ति अगर एडामेंट माइंड वाला हो जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर 20-25-30 साल का कोई लड़का यंग एडामेंट माइंड वाला हो तो बिल्कुल समझ में नहीं आती, उसने जाना ही कितना है, उतना उसने देखा ही कितना है। अगर आइंस्टीन अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ये कह सकते हैं अपने बारे में कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं समुद्र के तट पर रेत बिन करके और इस रेत को खत्म करना चाह रहा हूं, और इसी को दूसरी भाषा में आइंस्टीन ने ही कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं समुद्र के तट पर बैठ करके सीप से इस समुद्र के पानी को उलीच उलीच कर खाली करना चाह रहा हूं, बस इतना ही ज्ञान मुझे है, तो सोच के देखिए कि आइंस्टीन इस बात को कह रहे हैं। मित्रों समझने की कोशिश कीजिए, जब आपका दिमाग मेरा दिमाग किसी का भी दिमाग एडामेंट हो जाता है तो वहां नए की गुंजाइश खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है, फिर कोई फायदा नहीं, न तो पढ़ने से फायदा है न सुनने से फायदा है, यूं कह लीजिए कि जीवन हम तो जीते ही है लेकिन उसका फायदा नहीं मिलेगा। ये तो नहीं कहूंगा कि जीने का ना कोई फायदा है, लेकिन होगा क्या कि आप अनुभव से कुछ सीख ही नहीं पाएंगे, अनुभव को इम्बाइब ही नहीं कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी होता है कि जब हम लर्निंग करते हैं या जब हम अपने को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, समय के अनुकूल बनाना चाह रहे हैं, तो हम अपने दिमाग को रिलैक्स्ड करें और उससे भी ज्यादा अच्छा शब्द होगा उसको लचीला बनाएं कि जरूरत के हिसाब से उसमें नई चीजें आती रहें और फिर वो आपको अपने ढंग से एडजस्ट करने का हक देता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको ज्यों का त्यों स्वीकार कीजिए, उसको रिव्यू कीजिए, उस पर विचार कीजिए, लेकिन कम से कम कीजिए। तो आप तो आउटराइट रिजेक्ट कर देते हैं, कोई भी नई चीज बताई जाएगी आप आउटराइट रिजेक्ट कर देंगे, मुझे तो मालूम है, नो डाउट आपको मालूम है, बताने वाले को मालूम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बताने वाले ने जो बताया है उसको आपने ध्यान से नहीं सुना हो, अगर सुना हो तो आपको अभी उन चीजों के बारे में जानकारी नहीं जिधर इशारा किया गया हो, तो सुनिए ना और इसके बाद उसको समझने की कोशिश कीजिए, तब आप देखेंगे कि इस 15 दिन की क्लासेस का आप कितना जबरदस्त फायदा उठा पाएंगे। और मित्रों मैंने हालांकि ये बात कही है अपने उन स्टूडेंट्स को जो क्लास में आने वाले हैं, लेकिन इक्वली उनके लिए भी लागू होता है जो इस डेली ऑडियो लेक्चर को डेली सुनते हैं, और उन पर भी लागू होता है जो कभी कभी सुनते हैं, और उन पर भी लागू होता है जो इत्तफाकन आज सुन रहे हैं और बाद में कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि जीवन का संबंध केवल सिविल सर्विस की तैयारी करने से नहीं है, जीवन का संबंध तो उससे है जब तक कि हमारी सांस चल रही हो, तो हम कोशिश करें कि अपने एडामेंट माइंड को लचीला दिमाग वाला बनाएं, जो चीजों को स्वीकार करने को तैयार है, सुनने को तैयार है। हाँ, आप उसको रिव्यू अपने तरीके से कीजिए, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, ये थोड़ा सा मेरा संबोधन है, लेकिन एक बात मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट अब अक्टूबर नवंबर के बैच में आने वाले हैं, प्लीज वो एक दिन भी डेली ऑडियो लेक्चर मिस न करें, क्योंकि किसी भी दिन मैं अब इस तरह के उन्हें निर्देश कह लीजिए या मार्गदर्शन कह लीजिए दे सकता हूं, और वो आपके यहां 15 दिन की क्लासेस का पूरी तरह से फायदा उठाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। राइट फ्रेंड्स, आइए अब मैं मुख्य विषय की आपको जानकारी दे दूं। किसानों के आंदोलन पर हो सकता है कि हम लोग थोड़ी सी बात करें, हो सकता है थोड़ी सी बात इसलिए करें क्योंकि दूसरी बातें करने को मेरे पास बहुत ज्यादा हैं, तो बल्कि ज्यादा अच्छा होगा मित्रों कि आज हम, ठीक है चलिए, किसानों के आंदोलन पर ही बात करेंगे। मैं सोच रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर बात कर लेते हैं, लेकिन इस पर मुझे याद आ गया अचानक कि कुछ समय पहले हम लोगों ने बात की थी, तो आइए कुछ खबरें देख लेते हैं। महात्मा गांधी की जयंती पूरे देश में और दुनिया में जिस तरह से मनाई गई उसकी खबरें आपने पढ़ी, और ये मान करके चलिए कि जो महात्मा गांधी हैं वो बहुत ही महान व्यक्तित्व हैं, और ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। इस बार के आप अभी जो एग्जाम हुए हैं कुछ दिनों पहले उठा करके देखिए, तो सीधे सीधे पूछा गया है महात्मा गांधी की प्रासंगिकता क्या है, और आज मैं कई आपको आर्टिकल्स इसी से संबंधित प्रोवाइड कर रहा हूं कि उनकी प्रासंगिकता क्या है। मित्रों, खासकर स्वच्छता अभियान में भारत को जो सफलता मिली है, अब वो दुनिया पूरी चौकन्नी होकर के उसे देख रही है, इस पर आपने खबरें सुनी। स्वच्छता अभियान को लेकर के कुछ आर्टिकल्स, एडिटोरियल कमेंट्स हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज उसे भी आप ध्यान से देखेंगे। नोबल प्राइज की खबरें आनी शुरू हो गई हैं, दो विषयों में नोबल प्राइज दिए जा चुके हैं, किनको दिए गए हैं, किस विषय में दिए गए हैं, किन किन विषय में दिए गए हैं, मैं आपको बताने नहीं जा रहा हूं, ये मेहनत आप खुद कर लें, और मेहनत आप कर भी चुके होंगे मुझे मालूम है, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण प्राइज है कि डेफिनेटली आपने अखबारों में इसे पढ़ा ही होगा। मित्रों, एक नाम आपने रेडियो न्यूज में नरसी मेहता का सुना होगा, नरसी मेहता, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराए जाने रे, है ना, क्योंकि गांधी जी की 150वीं जयंती की शुरुआत है और गांधी जी का ये बहुत ही प्रिय भजन था, बहुत ही प्रिय भजन, सबसे अधिक प्रिय भजन नरसी मेहता। तो नरसी मेहता जी के बारे में आप थोड़ा सा जरूर पढ़ लें, जरूर कहीं आपको मिल जाएंगी, जगह जगह चीजें मिल जाएंगी, थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट बना लें, प्री में भी आपके काम आ सकता है, और चूंकि मेंस में आपके आर्ट लिटरेचर एंड कल्चर का हिस्सा होता है उसमें भी काम आ सकता है। चूंकि मेरे पास दूसरी बातें बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए मैं अभी नरसिंह मेहता जी के बारे में कुछ नहीं बता पा रहा हूं। एक बहुत जो महत्वपूर्ण खबर है, जो एक तरीके से आप कह लीजिए कि मुख्य विषय के पैरेलल चल सकता था, वो था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसके पहले सम्मेलन का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में किया। आपको ध्यान होगा इससे पहले हम लोगों ने इस पर बात की थी, फ्रांस और भारत दोनों ने मिलकर के इसकी शुरुआत की है, अब लगातार इसमें लोग शामिल होने के लिए आते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन भाषण को अगर आपको कहीं पढ़ने को मिले तो पढ़िए, या उसके हिस्से को आप देखिए, उन्होंने बहुत कुछ खूबसूरत बातें की कही हैं। एक बात तो उन्होंने इम्पोर्टेंट ये कही, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी बन सकता है, वो ये कि आने वाले समय में ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंग्लिश में है, ये बकायदे ओपेक को रिप्लेस कर सकता है। ओपेक एक संगठन है जो जिसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब उन देशों का संगठन जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। तो हो सकता है कि सौर अलायंस, सौर ऊर्जा वाले जो देशों का गठबंधन, ये जो अलायंस बना है, एक समय में इतना ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन करने लगे कि तेल की आपको जरूरत ही नहीं रह जाए, और यही फिर ऊर्जा की सप्लाई करते रहेंगे। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, और उसके तहत उन्होंने भारत का कमिटमेंट बताया है कि भारत 2030 तक, ये आंकड़ा आपको मालूम होना चाहिए, कि नॉन फ्यूल, मतलब ये कह ली आप यूं कह लीजिए ग्रीन एनर्जी, मोटे तौर पर कह लीजिए विंड्स से और वेव्स से और सूर्य से, लगभग लगभग हम अपनी ऊर्जा की जरूरत का 40% हिस्सा इसी से उत्पादन करने लगेंगे। और आपको मालूम है कि जो पेरिस सम्मेलन में हमने जो वायदा किया है वो है 2022 तक 175 गीगावाट बिजली भारत ग्रीन के माध्यम से, जिसे कह लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हासिल करेगा। और इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छा नारा भी दिया है फर्स्ट असेंबली में, और उन्होंने कहा है वन वर्ल्ड एक दुनिया, यानी कि वन सन एक सूर्य वन ग्रिड। वन ग्रिड यानी कि जो जिससे सप्लाई होती है ऊर्जा की, वह भी पूरी दुनिया एक है, सूरज भी एक है, तो बेहतर होगा कि ग्रिड भी एक बना लिया जाए ताकि अगर किसी देश के पास एक्स्ट्रा है एनर्जी तो दूसरे देश को भेजा जा सके, क्योंकि इसे तो आप पेट्रोलियम पदार्थों की तरह ट्रक में या पाइप में भर करके भेज नहीं सकते, तो इसका पाइप तो ग्रिड ही है, तारों का जाल बिछा दिया जाए पूरी दुनिया में। तो बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने कही है। मित्रों, अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर, जिसके लिए बहुत कम समय है और विषय भी बहुत सरल सा है, वो है किसानों का आंदोलन। आपने आज के अखबारों में पढ़ा होगा कि किस तरह से दिल्ली का जो बॉर्डर एरिया है वहां किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है, उन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी हैं। और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, आप अपने जो सिविल सर्विस मेंस के जो पेपर है उसका थर्ड उठा करके देखिए जनरल स्टडीज के, तो किसानों पर हर साल, खेती को भी किसानों में ही ले लीजिए, 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, कम से कम 2 और अधिकतम 3 प्रश्न तक सीमित होते हैं। और 2 या 3 प्रश्न एग्रीकल्चर या फार्मर्स से आ रहे हैं, तो आप इस टॉपिक के महत्व को समझ सकते हैं। इस बार के आप सिलेबस को उठा करके देखिए, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस किसानों से संबंधित पूछे गए हैं। एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पूछा गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किस तरह से किसानों को फायदा पहुंचाता है, बताइए। और दूसरा ये भी पूछा गया है कि ये जो सुपरमार्केट हैं, जो खुल जाते हैं सुपरमार्केट, ये सुपरमार्केट किस तरह से मध्यस्थतों को समाप्त कर देते हैं, यानी कि जो मिडिल मैन है उनको किस तरह से समाप्त करके और किसानों को फायदा पहुंचा सकते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे गए जो बहुत ही कॉमन तरीके के प्रश्न हैं। मित्रों, तो किसानों के आंदोलन को लेकर के मैं बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है और आज उस पर एक एडिटोरियल कमेंट भी है नव दुनिया का, उसमें उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि किसान क्या मांग कर रहे हैं कि उनके ऋण की माफी की जाए, क्या हो जाएगा, बहुत साल से ऋणों की माफी हो रही है, क्या उससे कुछ हो गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, बढ़ा दिया जाएगा, उससे क्या होगा, जब खरीदी ही नहीं होती है तो उसमें क्या होना है, फसल बीमा योजना लागू हो गई है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हो गई फिर भी किसानों की समस्या नहीं सुलझी है, जो बाजार मूल्य जो मंडी के जो अधिनियम थे नियम थे उनकी जगह पर एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल भी नेशनल लेवल का नाम ला दिया गया नेम, जिसको आप कहते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, उससे भी हल नहीं हो रही है तो क्या हो जाएगा। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही और यह भी अपने आप में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बन जाता है, वो ये है कि बहुत जरूरी है कि खेती से संबंधित जो बुनियादी ढांचा है उनका निर्माण किया जाए, बस केवल इसके लिए मैंने इस विषय को चुना है मित्रों, केवल इस ओर आपका ध्यान दिलाने के लिए कि खेती के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसका निर्माण होना चाहिए। अब खेती के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं, सिंचाई की सुविधा हो, भंडारण की सुविधा हो, कोल्ड स्टोरेज हो, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हो, मंडी तक किसानों के द्वारा उत्पादित सामान पहुंच सके, फिर मंडी हो, ये सारे के सारे किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है। बस आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दीजिए, किसानों के हितों की खुद रक्षा होने लगेगी, फिर आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो है कि ऋण माफ कर दिया जाए फलाना फलाना, तो ये केवल एक टेम्परेरी इलाज हो सकता है, टेम्परेरी राहत हो सकती है कह लीजिए, बीमारी का इलाज नहीं। तो मैं चाहूंगा कि इस टॉपिक पर आप लोग अपनी अपनी तरह से विचार करें और हो सके तो 100-200 शब्द लिखने की कोशिश करें, बहुत और बहुत ठोस तरीके से। राइट फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर, मैं प्रोवाइड कर रहा हूं फ्रेंड्स, आप सब अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं मनीष झा, दुष्यंत कुमार, अनिल किलानिया झुंझुन राजस्थान से, राहुल शर्मा लुधियाना पंजाब से, उन्नति पांडे, खुशबू प्रजापति, नितेश, राजकुमारी राजपूत उत्तर प्रदेश से, लव कुमार इंदौर से, सूरज यादव, राम सागर यादव, स्वाति रानी और गौरव गहलोत, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।